فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال وإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو رمضان المبارك کی وجہ سے ہماری کلاس میں ایک گیپ آ گیا تھا. رمضان المبارک سے پہلے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والی سٹوری شروع کر دی تھی. رمضان المبارک میں اور چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ بہت فضیلت والی ہوتی ہیں. رمضان ہے سوم پلیس, تو اس میں بہت عبادتیں کرنی ہوتی ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تراویح سنتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان المبارک میں جو پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہوتا ہے, پھر اکیڈیمک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ ہر جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. جو ہمارے دینی مدارس ہیں, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ریلیجس ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ لونر کیلنڈر فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لونر کیلنڈر قمری. تو لونر کیلنڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس میں محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رائٹ, یہ مہینے ہوتے ہیں 12. تو چونکہ وہ لونر کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا, تو ان کا جو ایجوکیشنل ایئر ہے, جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, وہ اکارڈنگ ٹو لونر کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے, وچ از وین شوال میں سٹارٹ کرتے ہیں. شوال رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے, اب ہم شوال میں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا ایجوکیشنل ایئر شوال میں شروع ہوتا ہے اور ان کا ایجوکیشنل ایئر ختم کب ہوتا ہے؟ رجب میں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رجب یا زیادہ سے زیادہ شعبان میں ختم ہوتا ہے. تو شعبان میں جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بریک آتی ہے. تو رمضان المبارک از آلویز اے منتھ آف بریک. ٹھیک ہے, آلویز اے منتھ آف بریک ان دا ریلیجیس انسٹیٹیوشنس, دینی مدارس کے اندر. جبکہ جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اسکولس, کالجز وغیرہ, تو وہاں پہ وہ لونر کیلنڈر فالو نہیں کرتے. وہاں پہ کون سا کیلنڈر فالو کرتے ہیں؟ سولر کیلنڈر, گریگورین جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گریگورین کیلنڈرز جو ہیں وہ تو پھر جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, رائٹ, یہ ہوتا ہے نا. تو اس میں پھر جو سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سپٹمبر میں کہیں اسٹارٹ ہوتا ہے, کہیں کسی مہینے میں اسٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ جو اینڈ ہوتا ہے اس میں جا کر کے اپریل میں اینڈ ہونا ہوتا ہے کہیں پر. اب اپریل میں اینڈ ہو رہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے اپریل میں رمضان سے پہلے اپریل آتا ہو یا رمضان کے بعد اپریل آتا ہو. کوئی لونر کیلنڈر تو موو ہوتا رہتا ہے نا. کبھی رمضان جو ہے وہ جون میں آئے گا, پھر 10 سال کے بعد رمضان جو ہے وہ جنوری میں آئے گا, تو وہ تو موو ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک میں بریک ہوں. ٹھیک ہے, ان کے یہاں کبھی سیشن چل رہا ہوتا ہے رمضان کے اندر, کبھی سیشن بند ہو جاتا ہے رمضان میں. تو اٹس جسٹ میٹر آف کوئنسیڈنس اکارڈنگ ٹو دیم. لیکن جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان میں رمضان میں کبھی بھی ایجوکیشن نہیں چل رہی ہوتی, وہاں پر رمضان میں عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہمارا بھی چونکہ سسٹم رمضان کے ساتھ ہے اور ہم بھی تفسیر کی کلاس کر رہے ہیں, تو رمضان میں ہم نے چھٹی کری. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے ہم دوبارہ سے اپنی کلاس کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی کلاسز جو ہم نے کری ان کو بھی قبول فرما لے اور آگے بھی ہمیں اور اچھے سے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, سورہ کہف یہ وہ پہلی سورت ہے جو کہ ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ دی اونلی سورت وچ ول بی اسٹڈینگ ان شاء اللہ. آفٹر دس وی ول گو آن ٹو ادر سورت. तो सूरह कहफ को हमने क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि सूरह कहफ का एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो एंड ऑफ टाइम्स के साथ, ठीक है, कयामत के जो कुर्ब की निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, तो उनमें से जो एक बहुत बड़ी निशानी है वो तो क्या है जिसका ताल्लुक सूरह कहफ के साथ भी है? दज्जाल का आना, ठीक है, कि दज्जाल विल कम आउट, ठीक है, वो है तो जिंदा, वो कहीं बंद करके बंदा हुआ है एक आइलैंड के अंदर, लेकिन ही विल बी रिलीज्ड, ठीक है, फरिश्ते उसकी चेन्स को तोड़ देंगे और फिर वो रिलीज हो जाएगा, फिर वो बाहर आ जाएगा। तो दज्जाल का आना जो है इस वन ऑफ द बिगर साइंस ऑफ कयामत, नियरनेस ऑफ कयामत। तो सूरह कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सूरह कहफ जो है वो दज्जाल के फितने से हिफाजत करेगी जो इसको पढ़ेगा, ठीक है। अब पढ़ने का मतलब क्या है कि सिर्फ आप उसको तिलावत कर लें और कुछ समझ में ना आए कि ये क्या क्या रही है, क्या मतलब है सूरह कहफ का, बल्कि इसका मतलब उलमा ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ तिलावत कर लेना नहीं बल्कि इसको समझना भी, कि सूरह कहफ हमें क्या चीज़ें सिखा रही है एंड हाउ डज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फितना ऑफ दज्जाल, ठीक है। तो इस वजह से वी स्टार्टेड आवर क्लास अंडरस्टैंडिंग द कुरान फ्रॉम सूरह कहफ, सो वी कैन डिस्कस इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, एंड एज यू कैन सी कि शायद हमारी 45 क्लासेज हो चुकी हैं माशाल्लाह, और सूरह कहफ की अब तक हमने 60 आयात करी हैं, बल्कि अराउंड 65 आयात पढ़ी हैं खाली, ठीक है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस, तो वो हम कर रहे हैं आपके साथ। बाकी है कि सूरह कहफ के साथ साथ हम आपको जो भी इसके अंदर फिर हमें दीनी बातें नजर आती हैं, चाहे वो तौहीद से मुतालिक हो, चाहे आखिरत के मुतालिक हो, चाहे वो नबूवत के मुतालिक हो, ठीक है, चाहे हमारी अपनी इस्लाह के मुतालिक हो, ठीक है, वो सारी बातें फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जाहिर इसी वजह से फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है इसके अंदर, लेकिन असल में हमारा मकसद यही है टू लर्न द दीन, ठीक है। तो अब जो है सूरह कहफ के अंदर हमें अच्छी तरह से इंशाल्लाह याद होगा कि अल्लाह ताला ने हमें 5 स्टोरीज बयान करी हैं, ठीक है। 5 स्टोरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 असहाबे कहफ वाली स्टोरी, पीपल ऑफ द केव, ठीक है। दूसरी स्टोरी जो थी साहिबुल जन्नतैन, के दो गार्डन्स का जो एक आदमी मालिक था, एक आदमी था ना जिसके दो गार्डन्स थे और वो अपने एक दोस्त के साथ या अपने साथी के साथ बातचीत कर रहा था वगैरह, तो साहिबुल जन्नतैन वाली स्टोरी कहा जाता है उस वाली स्टोरी को, ठीक है। तीसरी स्टोरी कौन सी थी? बहुत ही छोटी, एक लाइन में अल्लाह ताला ने जो स्टोरी बयान करी कौन सी थी? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वाली स्टोरी, ठीक है। थी तो वो बहुत छोटी सी, लेकिन उलमा ने इसको डिफाइन किया कि दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल स्टोरी ऑफ सूरह कहफ, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चौथी स्टोरी जो थी वो सूरह कहफ के अंदर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खजर अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी, और पांचवी जो स्टोरी होगी सिकंदर ज़ुल्करनैन वाली स्टोरी, जो कि इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हर स्टोरी से हमने ये भी कोशिश करी है कि भाई इस स्टोरी के अंदर दज्जाल से हिफाजत का क्या ताल्लुक है स्टोरी का, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम चौथी स्टोरी शुरू कर चुके हैं, इसी को हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए दोबारा से शुरू कर रहे हैं स्टोरी को, क्योंकि काफ़ी लंबा बीच में गैप आ गया था। तो ये चौथी स्टोरी है मूसा अलैहिस्सलाम और खजर अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी। तो ये स्टोरी जो है इसका बैकग्राउंड क्या था, कोई थोड़ा सा डिस्क्राइब अगर कर सके? एनीवन, आपका एक जवाब हो चुका लेते हैं कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कैसे शुरू हुआ सारा मामला। जी बिल्कुल अच्छा, ठीक। तो उन्होंने, अल्लाह ने जवाब दिया कि एक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि क्या आप सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि नहीं, एक और भी आदमी है जो कि आपसे भी ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। थोड़ी सी इसके अंदर मज़ीद तफसील ये लिखी है उलमा ने, जो कि हदीसों से ही उलमा ने कोट करके लिखी होती है, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बनी इसराइल के जो लोग थे ना उनको एक बयान किया, खुतबा किया, और वो खुतबा बहुत ही ज़्यादा मूविंग किस्म का होता था कि पीपल स्टार्टेड क्राइंग, बहुत इफेक्ट हुआ लोगों के ऊपर. तो जब किसी जो ऑडियंस होती है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है ना, तो अब वो जो स्पीकर होता है तो वो स्पीकर के बारे में फिर बहुत अच्छा सोचने लगते हैं कि हाँ भाई कितना ज़बरदस्त इन्होंने बयान किया है और कितने अच्छे हैं. तो ठीक है, तो इसी तरीके से उस ऑडियंस के अंदर से एक आदमी जो है उसने ये सोचा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना ज़बरदस्त बयान किया, इसका मतलब है कि ही इज़ सो गुड. ठीक है, तो उसने ना आउट ऑफ दिस फीलिंग ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आप जैसी आपने इतनी बातें करी हैं तो इतना ज़बरदस्त आपने बयान किया है, तो क्या आर यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट? आर यू द ग्रेटेस्ट? आर यू द मोस्ट नॉलेजेबल? आर यू द ग्रेटेस्ट स्कॉलर? ठीक है ना, तो इस तरह से उसने इस बयान के रिस्पॉन्स में सवाल किया, जिस बयान से उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसे कि आपको समझाया तो मैंने पहले, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया तो अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज दिस वॉज द राइट आंसर, क्योंकि वो यही जानते थे कि वो अल्लाह के नबी हैं उस जमाने में. ठीक है, और अल्लाह के नबी जो होते हैं वो इंसानों के सबसे ज़्यादा इंसानों में सबसे अफजल होते हैं, बिकॉज नबी इज द टीचर. ठीक है ना, और बाकी जितने लोग होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर इज मोर नॉलेजेबल देन एवरीवन एल्स. ठीक है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो गलत जवाब नहीं था, लेकिन उनका जो एक स्टाइल था ना जवाब देने का, इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ द स्टाइल्स. ठीक है, तो उलमा ने लिखा है कि उनको उनका जो बेहतर जवाब होता वो ये होता कि अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह को ज्यादा पता है. ठीक है, तो चूंकि थोड़ा सा एक कमी हो गई ना उनके उनके जवाब के अंदर, गलत जवाब नहीं था, लेकिन होता है ना भाई कि यू गेट 100% मार्क्स और यू गेट 99% मार्क्स. 99 भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 100 जो है उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, तो 99% वाला जवाब ये था कि बस हाँ, आई एम द मोस्ट नॉलेजबल. तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला के जितने बंदे हैं ना वो ह्यूमिलिटी अपने अंदर रखें, हम्बलनेस हो हमारे अंदर. ठीक है, तो हमारे जो आंसर्स होने चाहिए वो भी एक ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस जैसे आंसर्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिलिटी. तो चूंकि इस जवाब के अंदर ह्यूमिलिटी वाला एस्पेक्ट नहीं था, बल्कि ज़रा सा अपनी बड़ाई वाला एस्पेक्ट था कि हाँ भी मुझे पता है. ठीक है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाई, उनको ट्रेन किया कि नहीं ऐसे नहीं, बल्कि तुमने ऐसे जवाब देना चाहिए था. लेकिन ये जो ट्रेन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किया ना, ये ट्रेन कैसे किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम अभी आते हैं, पहले हम जरा आयात और उनका तर्जुमा भी साथ साथ चलाते रहते हैं. तो वर्स नंबर 60-70 जो ग्रुप है, मार्कुल कुरान वॉल्यूम 5 के अंदर पेज नंबर 621 पर है ये. ठीक है, तो किसी के पास बुक्स हैं तो वो बुक्स में 621 पेज खोल लें वॉल्यूम 5 में. ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं मूसा अलैहि सलाम का वाक़या बयान करते हुए कि व इज कादा एंड वेन. ठीक है, मूसा अलैहि सलाम सेड लिफताहू, अपने यंग मैन को. ठीक है, फतेह कहते हैं यंग मैन. ठीक है, तो यंग मैन क्यों कहा, क्योंकि उनके साथ एक एक सर्वेंट थे, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, बाद में जाकर ये पैगंबर बने थे, इस वक्त ये पैगंबर यानी नबी नहीं थे. ठीक है, तो इनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जो उन्होंने लिखा भी है यहाँ किताब में, कि यूशा अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये दो जनरेशन्स ऊपर जाकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते थे. ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ पेज 623 के ऊपर कि इनकी एंसेस्ट्री क्या थी, कि यूशा सन ऑफ नून, सन ऑफ इफ्राइम, सन ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज सन ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम, एंड याकूब अलैहिस्सलाम वाज सन ऑफ इसहाक अलैहिस्सलाम, एंड इसहाक अलैहिस्सलाम वाज सन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस तरीके से ये पूरी की पूरी फैमिली लिनियज थी. ठीक है, तो ये जो बनी इसराइल जिसको हम कहते हैं ना, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, हाँ लिख लें, यूशा सन ऑफ नून, सन ऑफ इफ्राइम, सन ऑफ यूसुफ, नून इफ्राइम यूसुफ. ठीक है, तो बाकी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तो आपको याद होना ही चाहिए, तो मैं ये लिखवा रहा. अच्छा, तो ये जो है ना, जिसको हम चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कहते हैं, बनी इसराइल, जिन जिन नेशन को हम कहते हैं, तो व्हाट इज बनी इसराइल? बनी इसराइल इज जस्ट वन बिग फैमिली, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी फैमिली। ये फैमिली कहाँ से शुरू, कहाँ से होती है? इसराइल अलैहिस्सलाम से। इसराइल अलैहिस्सलाम कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम, बिकॉज दैट वॉज हिज सेकेंड नेम। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जो आज मुल्क है ना दुनिया में इसराइल नाम का, उन्होंने अपने मुल्क का नाम जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा, ठीक है। तो वो क्यों रखा है? क्योंकि दे क्लेम, और दे से, दिस इज नॉट अ रॉन्ग क्लेम, कि दे आर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, बनी याकूब, ठीक है। तो वह अब बनी याकूब यानी याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? 12 बेटे थे, ठीक है। तो उन 12 बेटों के आगे बेटे हुए, और उनसे बहुत सारी औलादें हुई, बहुत सारी औलादें हुई। तो इस तरीके से ये यानी दे आर इन द मिलियंस नाउ, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर ही ना अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को पैगंबर बनाया, नबी बनाया, प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो इट कम्स इन बुक्स के बनी इसराइल के अंदर मोर देन 10,000 प्रॉफिट्स गेन, ठीक है, मोर देन 10,000। तो उनके यहाँ क्या होता था कि एक प्रॉफिट जब दुनिया से चला जाता था, तो अल्लाह ताला उन्हीं में से किसी दूसरे नेक आदमी को फिर अपना प्रॉफिट बना देते थे। कैसे प्रॉफिट बनाते होंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते होंगे और उनको बताते होंगे कि भाई, यू हैव नाउ बीन अपॉइंटेड, यू हैव नाउ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रॉफिट, नाउ स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह ताला प्रॉफिट्स बनाते रहते थे। तो एक वक्त में एक से ज्यादा प्रॉफिट्स भी होते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भी प्रॉफिट थे, और उनके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम वो भी प्रॉफिट थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से और भी बहुत, सूरह यासीन के अंदर जो अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली रमजान मुबारक में, तो वो तीन प्रॉफिट्स, वो भी बनी इसराइल के प्रॉफिट्स थे, तीन प्रॉफिट्स एट अ टाइम एक कौम के पास गए थे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। खैर, तो यूशा अलैहिस्सलाम के जो फताह थे ना, वो यूश सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फताह यानी जो यंग मैन थे, वो यूशा बिन नून थे, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि भाई, अगर आपका कोई सर्वेंट भी होता है ना, तो सर्वेंट को भी जो है वो हमें एक अच्छे नाम से पुकारना चाहिए, ठीक है। उसको इस तरह से, अरे वो नौकर, वो उल्टे सीधे कोई कोई टाइटल से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि एक अच्छे नाम से। तो अल्लाह ताला ने यूशा बिन नून के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? लिफताहु, ठीक है। ही वॉज द यंग मैन, ठीक है, ही वॉज द असिस्ट, लाइक असिस्टेंट और ए कंपेनियन ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने सर्वेंट के साथ जा रहे थे, ठीक है। तो फरमाया कि जब मूसा ने अपने यंग मैन यानी फताह से कहा, ना अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमाअल बहरैनी, के वी विल नॉट सीज टू वॉक, वी विल नॉट स्टॉप वॉकिंग अंटिल वी रीच द प्लेस वेयर टू ओशंस कम टुगेदर, मजमाअल बहरैन, बाहर कहते हैं ओशन को या पानी को, ठीक है। तो दो ओशंस का जो कमिंग टुगेदर वाला पॉइंट है ना, मजमाअल बहरैन, जमा होने वाली जगह है, वहां तक जब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे हम चलते रहेंगे। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम से उस आदमी ने सवाल किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भाई, मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि नहीं, आपसे भी ज्यादा एक नॉलेजेबल है आदमी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वॉज वेरी ईगर टू सीक नॉलेज, ठीक है ना, बहुत अच्छे ये तालिबे इल्म थे, स्टूडेंट थे, ठीक है, अल्लाह ताला इनके टीचर थे। तो स्टूडेंट भी बेहतरीन, जाहिर टीचर अच्छा होता है, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो इनको नॉलेज हासिल करने की बहुत ज्यादा तलब थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, मैं ना उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला तो पहले ही चाहते थे कि हाँ, जरा मिले ताकि उनको कुछ बातें समझ में आए। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर एग्जैक्टली बता दिया कि आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं जाके, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बता दी थी कि वो जो आदमी है जिनसे आप मिलने का कह रहे हैं, ये उस जगह आपको मिलेंगे जहां पर के दो ओशन जो है ना, वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब ये दो ओशन आपस में मिलते हैं, ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, जैसे कि तफसीर में भी लिखा हुआ है, ये मैं भी पढ़ूंगा नहीं कि कौन कौन सी जगह है। एक जगह फॉर एग्जाम्पल ये है कि जहां पे मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग, ये अटलांटिक ओशन एक बहुत बड़ा ओशन है जो कि यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकास के दरमियान है, बीच में, ठीक है, इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी जो है ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी जो है ये अटलांटिक ओशन से मिलता है, इनके बीच में कोई लैंड नहीं है, ठीक ठीक है। तो ये जो मिलता है ना, ये मिलता ऐसे है कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो बिल्कुल एक अलग प्रॉपर्टीज रखने वाला पानी है और अटलांटिक ओशन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ये बस ऐसे मिलते हैं कि मेडिटेरेनियन सी का पानी ऐसे रहता है और यानी बिल्कुल अलग अलग, ये जैसे दो हाथ अलग अलग है ना, उसी तरह मेडिटेरेनियन सी इस तरफ और अटलांटिक ओशन इस तरफ। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्लेसेस, और भी बहुत सारी प्लेसेस उन्होंने लिखी भी है किताब में और आप भी थोड़ा रिसर्च करके पता कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो बताया वो स्पेसिफिकली बता दिया कि जी यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अपने फतह के साथ यानी यूशा बिन नून के साथ, तो अपना जील अपने एंथुसियाज्म उनको एक्सप्रेस करते हुए कहा कि मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ उस आदमी से मिलने में, एंड आई विल कीप ऑन वॉकिंग अंटिल आई रीच दैट प्लेस वेयर आई एम सपोज टू मीट दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना ये जील और अपना जज्बा बताया उनको, ठीक है। औ अम्दिया हुकुबा, और ये भी कहा कि इवन बहुत लंबा अरसा भी गुजर जाए ना तब तक भी मैं चलता रहूँ, ठीक है। हुकुबा का मतलब होता है बहुत लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। ये कुरान में और भी जगहों पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है और उलमा ने लिखा है कि अरबी जुबान में लफ्ज हुकुब का मतलब होता है 80 years, 80 years, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गोया के ये कह रहे थे कि अगर 80 years भी गुजर जाए ना मैं फिर भी चलता रहूँ। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लाइक मेटाफोरिकली स्पीकिंग, कोई बंदा वैसे 80 साल तक चल नहीं सकता। इवन मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, नबी बेशक थे लेकिन इंसान तो थे ना, तो 80 साल तक तो मूसा अलैहिस्सलाम चल नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन बस अपना एक डिजायर्ड एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात की, ठीक है। तो फरमाया फिर उसके बाद फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सरबा, फिर जब ये दोनों के दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून पहुंच गए उस जगह पर जहां पर के दोनों ओशंस मिलते थे, ठीक है, नसिया हूतहुमा, तो फिर ये अपनी मछली को भूल गए। भूत कहते हैं मछली को, ठीक है। कुरान के अंदर मछली के लिए भूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और भी कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लेकिन भूत का लफ्ज भी मछली के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों जो है ना भूल गए अपनी मछली को। फत्तखज़ा सबीलहु, तो फिर ये अच्छा मछली जो थी ना उसने पानी के अंदर अपना एक रास्ता बना लिया और इस तरीके से उस रास्ते के अंदर चली गई जैसे कि स्लिप होती है कोई चीज़। फिर बाहरे सराबा, सराबा का मतलब होता है स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए अंदर चले जाना, ठीक है। तो ये क्या स्टोरी थी, ये स्टोरी इस तरह से थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी कहा कि आप जो है ना उन आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर जाएं जहां पर दो ओशंस आपस में मिलते हैं और आप अपने साथ एक मछली को रख लें, फिश, डेड फिश, ठीक है। अच्छा मुझसे हमारी बेटी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जिसका जवाब जो है वो तो उस वक्त मुझे जहन में नहीं आया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई वो बात कि ये जो मछली रखी थी ना अपने सामान में उन्होंने, तो ये मछली अल्लाह के हुक्म से उन्होंने रखी, ठीक है। इस मछली का रखने का मकसद ही ये था कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था कि ये डेड मछली जो तुमने रखी है ना अपने सामान में, ये डेड मछली जब जिंदा हो जाए, ठीक है ना, तो वो वक्त होगा कि जब तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके होगे। तो मछली जो है वो इस इंडिकेशन के लिए उन्होंने रखी है, ठीक है ना। हाँ कुछ जगहों पे हमने सुना कि मछली उनके खाने के लिए रखी गई थी, ठीक है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं था, ठीक है ना। हो सकता है कुछ इसकी और डिटेल्स हों जो कि अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपेरेंटली यही लगता है तफसीर से कि मछली खाने के लिए नहीं रखी थी, खाने के लिए दूसरी चीजें रखी होंगी, टोस्ट रखा होगा, टावटना कुछ भी रखा होगा खाने के लिए। तो उन्होंने जो अपने बैग में पैक किया था ना अपना फूड, ठीक है, उस फूड में और चीजें भी होंगी लेकिन साथ साथ उन्होंने उसी बैग के अंदर मछली भी पैक कर ली होगी, डेड मछली, ठीक है। डेड मछली का मकसद यही था रखने का कि जब ये जिंदा होगी दिस विल बी द प्लेस वेयर यू विल फाइंड हज़रत अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है, और इतना चलते रहे कि ये भूल ही गए मूसा अलैहिस्सलाम मछली का की बात भूल गए, उनके जहन से भी ये निकल गई कि मछली को भी जरा चेक करता रहूं कि क्या हुआ मछली का, ठीक है ना। और वो इस बात को भी, या तो अल्लाह ताला ने उनको जो गूगल कोऑर्डिनेट्स, जो भी कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन बताई थी कि तुमने यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो वो जो है ना वो उस प्लेस तक भी जब पहुंच गए ना, ही यानी ओवर ट्रेवर्स्ड, वो उस जगह पे पहुंच करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना। यानी उनको ये ध्यान नहीं रहा कि मैं वाकई मजमाल बहरेन तक पहुंच गया हूँ, ठीक है, तो वो चलते रहे, वो ओवर ट्रेवर्स कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई कि वो ओवर ट्रेवर्स कर गए, यानी आगे बढ़ गए अपनी जगह से, ठीक है। और आगे बढ़ करके फिर ये जो है इनको, अच्छा ओवर ट्रेवर्स तो उन्होंने एक्चुअली बाद में किया, हुआ ये कि ये जब चलते चलते ना इनको थोड़ी सी थकन फील हुई, तो ये थोड़ा सा आगे तो बढ़ गए थे अपनी जगह से गालिबन, लेकिन इनको थकन फील हुई तो उन्होंने कहा भाई मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, सोऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना वहाँ पे लेट करके सो गए, पत्थर के ऊपर ही उन्होंने शायद अपना सर लगाया होगा, रखा होगा तकिए के तौर पर, पत्थर के ऊपर सर रखा और इनको नींद आ गई, बहुत थक गए थे, ठीक है। अब ये जो सो गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं थके थे, उनको थकन फील नहीं हो रही थी, हालांकि वो भी इतने ही चले थे। तो इससे क्या पता लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज ऑब्वियसली अ यंग मैन, फिताहू उनका नाम था, यानी उनके लिए वर्ड यूज़ किया, तो वो यंग थे। तो यंग मैन जो होते हैं वो ज़रा देर में थकते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक ज़रा बूढ़े हो चुके होंगे, ज़रा उनकी ज़्यादा उम्र 50s में होंगे, 60s में होंगे या उससे भी ज़्यादा, तो वो थक गए और उनको फ़ौरन से नींद दिया गया। नहीं नहीं पैदल चल रहे, पैदल चलते हैं, यानी वो गोया के ओशन के साइड में या तो चल रहे होंगे, यानी जमीन पे चल रहे होंगे टूवर्ड्स दी ओशन, ठीक है। तो वो उनको ओशन नजर नहीं आया, या ओशन जरा दूर था, या लेकिन बहरहाल वो पैदल चल रहे थे जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ये थक गए, ये सो गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जाग रहे थे, तो वो वहाँ बैठ गए और साथ उनके वो बैग रखा हुआ था जिसमें उन्होंने अपना खाना मछली वगैरह पैक करी हुई। तो इतनी में क्या हुआ कि जो मछली अंदर थी वो मछली जिंदा हो गई, ठीक है, और जिंदा होकर के उस मछली ने एक एक जंप लगाई, बैग से वो बाहर निकली, और किसी तरीके से वो पूरा एक ट्रेजेक्टरी मोशन बनाते हुए मछली जो है ना वो ओशन के अंदर चली गई, पानी के अंदर चली गई समंदर के, और पानी के जो अंदर गई ना, तो वो इस तरह से हुआ कि अल्लाह ताला ने उस वक्त एक ऐसा मुआवजा किया कि पानी जो है वो खुल गया। जैसे आपने सुना होगा ना मूसा अलैहिस्सलाम के जब फॉलो करा था वो फिरौन, तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था कि असा मारो, कि असा मारो पानी के ऊपर, तो असा मारने से क्या हुआ था कि पानी जो है ना वो खुल गया था, ठीक है, बिल्कुल इधर का पानी इधर हो गया था, इधर का इधर हो गया था, और बीच में जो है वो एक रास्ता निकल आया था, ठीक है। उसी किस्म का काम हुआ वहां पर भी, लेकिन ये जो हुआ ये टनल की शक्ल में हुआ, ठीक है। तो टनल एक इमेजिनरी, आप सोच सकते हैं कि टनल किस तरह की बन गई होगी, तो उस टनल के अंदर जो है वो फिश चली गई और वो स्लाइड होती हुई अंदर चली गई, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान, ये क्या हो गया भाई, अजीब और गरीब किस्म की चीज़ है, तो मुर्दा मछली जिंदा हो गई, फिर उसने ऐसी जंप मारी और पानी के अंदर, पानी में भी टनल बन गई, तो यानी ये सारी चीज़ें उनको नजर आ रही थी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि वो ओशन के करीब पहुंच चुके थे, ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को वो वाली बात नजर नहीं आई होगी कि इधर का ओशन और इधर का ओशन दोनों जो है वो, ये चीज़ उन्होंने मिस कर दी होगी, व्हाटएवर रीजन अल्लाह ताला की हिकमत होती है। द फिश वॉज इन देयर बैग, यस द फिश वॉज इन देयर बैग, ठीक है, लेकिन बैग से फिर वो निकली, जंप मारी ना उसने, अच्छा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आराम करके फिर जागे, और जा करके उन्होंने कहा कि चलो भाई आगे। तो जब वो आगे चलना शुरू हुए तो फिर उसके बाद ना उनको लगी भूख, ठीक है, पहले उनको लगी थी थकन, भूख नहीं लगी, है ना, पहले भी तो भूख लग सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला ये जब ये जो फीलिंग्स होती है ना हमारे अंदर, भूख की फीलिंग, थकन की फीलिंग, नींद की फीलिंग, ठीक है, ये सब कुछ ही अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। कभी अल्लाह ताला जो है वो इन चीजों के लिए कुछ कॉजेस बना देते हैं, ठीक है, कॉज, कॉज क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से कोई काम हो रहा होता है या जिसको यूज करते हुए कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉज बनाते हैं ये कौन बनाते हैं, अल्लाह ताला बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, अब बीमार होने के लिए बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं ना, एक कॉज ये हो सकता है कि जी आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, आजकल बहुत फैला हुआ है यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, लोगों को बुखार हो रहा है, ठीक है, वायरस इसका कॉज बना दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन बीमारी किसने दी? बीमारी तो अल्लाह ने दी ना, वायरस तो कॉज बन गया, कभी बैक्टीरिया कॉज बन जाता है, ठीक है, और कभी जो है वो किसी ने आपको नजर लगा दी, रश की निगाह से तो देखना होता है, और लाहौला कुव्वता नहीं पड़ा, माशाल्लाह नहीं पड़ा, तो नजर लग जाती है, जस्ट द आई जस्ट डिसाइड, ठीक है ना, ये जो आंख लग जाती है ना किसी की, यानी हम बाप एक तरह से लग रहे हैं आप, है ना, माशाल्लाह नहीं कहा, लाहौला कुव्वता नहीं कहा, तो इसका इतना असर होता है कि दिस कैन बिकम द कॉज ऑफ यू बिकमिंग इल, फिजिकली इल, आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है ना, आपको आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ और फिजिकलनेस हो सकती है, सिर्फ आंख की वजह से, सिर्फ आंख के देखने की वजह से, ठीक है, इसी वजह से एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन स्टिल आई हैव टू कन्वे दिस, कि ये जो लोगों को बहुत शौक पड़ा हुआ होता है ना आजकल के दौर में अपनी तस्वीरें खींचने का, ठीक है, सेल्फीज, मोबाइल फोन्स, हर के अंदर कैमरा होता है, पहले कैमरा इतने आसान नहीं होते थे, अब हर एक के पास कैमरा है, ठीक है ना, तो फौरन हम लोग अपनी तस्वीरें खींचते हैं और उन तस्वीरों को फेसबुक के ऊपर, तो ना जाने कौन कौन सी सारी चीजें, और व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो उसके ऊपर हम डाल देते हैं, ठीक है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके करने से यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू दिस नजर, ठीक है, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, अब अगले बंदे आपको देख रहे हैं, आपकी शक्ल देख करके, तो यानी दिस इज जस्ट क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ नजर, ठीक है, वैसे तो कोई आपको ऐसे भी सामने देख करके नजर लगा सकता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप प्रोफाइल उस पर डाल देंगे तो अब जो है ना वो जो आपको देख रहा है तो वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और वो आपको वहां से देख रहा है, अब वो उसकी क्या उसके दिमाग में बातें चल रही हैं, क्या उसके दिल में बातें चल रही हैं, ठीक है ना, कभी ऐसा होता है कि जब वो सामने आके आपसे मिलता है ना तो मामला बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन और आप उससे अच्छे से बात कर लेते हैं, तो वो उसकी नाराजगी अगर होती भी है ना आपसे, वो नाराजगी खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब वो आपकी तस्वीर देख रहे हैं और वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसके आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, तो अब उसके दिल में अगर कोई कीना, कोई हसद, कोई बोझ, इस किस्म का नफरत वगैरह आपके बारे में चल रही है ना, तो वो इमीडिएटली असर करेगी उसकी निगाह के, ठीक है ना, और वो जो निगाह जिससे वो आपको देखेगा, तो वो निगाह जो है वो कोई ऐसी निगाह हो सकती है कि जिसकी वजह से कि आपके जान के ऊपर या आपके माल के ऊपर या आपके खानदान के ऊपर कोई नेगेटिव असर आ जाए, ठीक है, तो इसको नजर लगना कहते हैं, नजर जो है वो किसी भी तरीके से लग सकती है, आपका माल का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, वेल्थ का नुकसान हो सकता है, आपकी जान का नुकसान हो सकता है, यानी आप बीमार हो सकते हैं, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर लगने की वजह से मौत भी वाक हो सकती है, मौत भी वाक हो सकती है, ठीक है, और या फिर कि आपके खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा, इस किस्म की चीजें शुरू हो जाए, ठीक है, इस वजह से ये पिक्चर्स डिड नॉट एग्जिस्ट, कैमरा तो अभी बनाया ना, पुराने जमाने में पिक्चर्स होती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में पीपल यूज्ड टू मेक पिक्चर्स एंड दे वर अलाउड इन द शरिया, ठीक है, बनी इसराइल के जमाने में जो पैगंबर होते थे तो पिक्चर मेकिंग वाज अलाउड, बट नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद पिक्चर मेकिंग वाज नॉट अलाउड, इट वाज फॉरबिडन, मना कर दिया गया था इनको, काबतुल्लाह के अंदर पिक्चर्स मौजूद थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के उन पिक्चर्स को खत्म कर दिया, तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्चर्स, इट वाज इरेडिकेटेड, इट वाज रिमूव्ड, ये तो अब जो कैमरे ईजाद हो गए तो इनकी वजह से ना इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, एज इफ देयर आर अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग विदाउट देम विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लेकिन हमने अपने आप को खामखाज का एक मोहताज बना लिया है, तो इस वजह से ना वी शुड अवॉइड देम एज मच एज वी कैन, हाँ जहाँ मजबूरी है पासपोर्ट के लिए खिंचवानी है, आईडी कार्ड के लिए खिंचवानी है, किसी और आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्कूल के कार्ड के लिए खिंचवानी, भाई वो मजबूरी है, तो मजबूरी में तो वैसे भी काम आसान हो जाता है ना, लेकिन ये शौक हमें नहीं रखने चाहिए, खाम खाम अपना नुकसान करते हैं, ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कॉज की वजह से तो बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो जाते हैं ना, तो बीमारी कहाँ से आती है, बीमारी तो अलग तरफ से आती है, लेकिन कॉज बन जाती है ना, ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको असल में तो यही बात बता रहा था कि जिस तरह से बैक्टीरिया बीमारी का कॉज बन जाता है, जिस तरह से वायरस बीमारी का कॉज बन जाता है, उसी तरीके से नज़र भी बीमारी का कॉज बन जाता है, राइट। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं ना कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी कि आप जो हैं वो जिस घर के अंदर वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्शन पहले फैला हुआ था, है ना, एक घर के अंदर वायरल इन्फेक्शन पहले फैला हुआ था, तो अब आपको क्या ज़रूरत थी अपने बच्चों को लेकर के आप उस घर में चले गए, ठीक है। तो अब वो घर में वायरल इन्फेक्शन था, तो अब आपके बच्चे को भी वायरल इन्फेक्शन लग गया, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ यार मुझसे गलती हो गई, मुझे उधर लेके नहीं जाना चाहिए था अपने बच्चे को, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि बीमारी जो है वो तो अल्लाह की तरफ से होती है, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा ना कि मुझे अपने बच्चे को वायरल इन्फेक्टेड घर के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए था, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मौत भी अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन डू वी रश एंड कॉल फॉर डेथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह कुछ अरब यूथ हैं, आप लोगों अगर किसी दोस्ती होगी तो वो बहुत राउडी ड्राइविंग करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, और यानी वो मरते भी हैं बुरी तरीके से फिर, ठीक है। तो जब उनसे कहो ना कि जी आप ऐसे ड्राइविंग ना करें, मेरे एक दोस्त मुझे बता रहा था कि जब मैंने अपने दोस्त से कहा, अरब दोस्त से, कि जी ऐसी ड्राइविंग ना करो, तो क्या कहता है, मुसलमान तो है ना, वो कहता है ज़िंदगी है मौत तो अल्लाह के हाथ में भाई, तो मैं करूँगा ऐसी ड्राइविंग तो मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बात, ये तो बड़ा ज़बरदस्त ईमान वाला बंदा है यार, तो अल्लाह तवक्कुल है ना, तो अल्लाह के ऊपर इतना तवक्कुल है उसको कि अल्लाह के हाथ में मौत है तो मैं तो ऐसी गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसको कहा, उससे ये भी तो कहो ना कि भाई ठीक है तुम्हारी मौत अल्लाह के हाथ में, दूसरों की मौत क्यों लेकर के आ रहे, तुम ऐसी गाड़ी चलाओगे तो दूसरों को मारोगे, ठीक है, तो दूसरों की मौत भी अल्लाह, यानी यू नो व्हाट वी टॉकिंग, यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो इस वजह से वी डोंट आस्क, वी डोंट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, कि भाई हाँ भाई मैं ऐसा गलत काम करूंगा ताकि मैं मर जाऊँ, वो मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस वजह से हमें जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से मना किया है, जिन कामों को डिस्करेज किया है करने से, तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बीमारी तो अल्लाह के हाथ में, मैं तो जाऊँगा और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं तो इस तरह की ड्राइविंग करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ निकल गए, क्या बात कर रहे थे। तो फिर ये जो मछली थी, जब हाँ मूसा अलैहि सलाम थक गए, हाँ याद आ गया, तो मूसा अलैहि सलाम थक गए, तो थकन अल्लाह की तरफ से हुई, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो थकन मूसा अलैहि सलाम को दी ना, तो इसके बीच में अल्लाह ताला ने शैतान को एज अ सबब यूज नहीं किया, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। अक्सर होता है अल्लाह ताला किसी ना किसी चीज़ को एज अ कॉज यूज़ करते हैं ना, जैसे वहीं से मैंने बात शुरू करी थी, वायरस को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, नज़र को यूज़ कर लेते हैं बीमार होने के लिए कभी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग जो है ना, ये हम जो बहुत थक जाते हैं कभी, थकने की भाई मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ वो मुझे सोना है, और मैंने जो है वो अपना काम नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, मुझे अपने स्कूल का काम नहीं करना, मुझे जो मम्मी ने कहा है करने को मैंने नहीं करना, मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो ये जो थकन होती है ना, ये थकन जो है जो हमें हो रही है, फील हो रही है, ठीक है, इस थकन का कॉज कौन बन रहा है, इस थकन का कॉज कौन बन रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये जो थकन मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ना चाहता, जिसकी वजह से मैं अपनी कोई एसेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल नहीं करना चाहता, तो हम कहेंगे कि इस थकन का जो कॉज बना रहे हैं अल्लाह ताला, वो शैतान को बना रहे हैं, ठीक है। शैतान इज एक्चुअली मेकिंग अस फील टायर्ड, ठीक है ना, क्यों, इसलिए कि इस थकन की वजह से हम अपने फर्ज को छोड़ रहे हैं, ऑब्लिगेशंस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हमारे साथ होता है, क्योंकि हम बहुत गुनाह कर रहे होते हैं, और हम जो है ना, वो शैतान हैज अ वेरी इजी एक्सेस टू अस, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर शैतान को कॉज बना देते हैं इस किस्म के कामों के, ठीक है, लेकिन उसकी कॉज मतलब असल तो प्रॉब्लम हमारी अपनी होती है, शैतान तो कॉज बन जाता है। बहरा अंबिया अलैहिस्सलाम जब थक जाते हैं, तो हम वहां पर नहीं कह सकते कि शैतान को कॉज बना दिया अल्लाह ताला ने और उनको थका दिया, क्योंकि उन्होंने अपने किसी फर्ज को नहीं छोड़ा उस थकन की वजह से, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उनके अंदर थकन पैदा कर दी। तो अब हम इसको जो है ना, वो शैतान से एटीट्यूट नहीं करेंगे कि शैतान की वजह से वो थक गया, वो थक गया मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको थका दिया, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको भूख नहीं लगाई, ठीक है, थका दिया, और थकने की वजह से वो सो गए, जैसे ही लेटे वैसे ही सो गए, ठीक है, भूख नहीं लगाई। अब उसके बाद जब वो जागे, सो के उठे, तो अब चलना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको फिर याद आ गया कि मैं जो हूँ, हाँ माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही, आपका जुमला मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन यू गॉट द पॉइंट कि डजंट शैतान मेक अस टायर्ड इन स्टफ लाइक वेयरिंग फॉर वेकिंग फॉर फजर, ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ होता है, वो नबी के साथ तो नहीं होता ना कि शैतान ने नबी को थकन दे दी और वो फजर की नमाज उनकी कज़ा हो गई, ऐसा नहीं होता। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे और उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने उनको लगाई भूख, ठीक है। हमें जब भूख लगती है तो दो तरह की भूख होती है, एक भूख होती है जो कि वाकई हमें, हमने बहुत देर से नहीं खाया है फिर हमें भूख लग रही होती है, और एक हमें वो भूख लगती है जिसमें वी जस्ट वॉन्ट टू ईट, कोई भूख भूख नहीं होती हमें, बस वो एक डिज़ायर हमें फील हो रही होती है खाने, जिसको हम कहते हैं वो चुगना जिसको कहते हैं, या पंजी ईटिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ चुगना होता है, ठीक है, तो वो शैतान की तरफ से भूख होती है। लेकिन एक जेन्युइन भूख होती है जो कि वाकई आपने 12 आवर्स तक नहीं खाया है, 16 आवर्स तक नहीं खाया है, आपको भूख लग रही है, ठीक है। तो वो जो जेन्युइन भूख होती है ना, उस जेन्युइन भूख को कहते हैं अल्लाह की तरफ से भूख, और ये जो हमारी डिजायर वाली भूख होती है उसको कहते हैं शैतान वाली भूख, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जेन्युइन भूख लगाई, ठीक है, कि अब उनको याद आया कि जी वो जो हमने खाना पैक किया था तो अब हमें खाना खाना चाहिए, तो उन्होंने यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई खाना लेकर के आओ जो हमने पैक किया था। तो अब जो है ना, यूशा अलैहिस्सलाम को याद आया, वो पहले भूल गए थे मछली का जिंदा होना, मछली का जंप लगा करके पानी में स्लिप हो जाना, सब भूल गए। वो कैसे भूल गए? ये भी भूल जो उनको हुई, ये भूल शैतान की तरफ से हुई, सॉरी, ये भूल जो है वो रहमान की तरफ से हुई, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून से कहा कि भाई लाओ हमारा खाना, अब हमें लगी है भूख, तब यूशा अलैहिस्सलाम को याद आ गया, अल्लाह ने याद दिला दिया, इस बात ने भी याद दिला दिया, ठीक है, कि मछली का वाकया हो गया था। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खाना तो गया, अब तो कोई खाना वाना हमारे पास नहीं है, ठीक है। खैर, जो भी था एग्जैक्टली हमें नहीं पता, कुछ इसमें आगे जाकर के आपको और भी तफसीलात आएंगी, लेकिन यूशा अलैहिस्सलाम ने उनको मछली वाला वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन तो यूशा अलैहिस्सलाम ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारी बातें बताई, तो फिर क्या हुआ, फलम्मा जा वजा काल लिफताहु आतिना गदाना, कि जब ये लोग ना जा वजा, ये लोग आगे बढ़ गए, उसको कहते हैं ना उर्दू में तजावुज कर गए, ठीक है ना, यानी जहां तक इनको पहुंचना था दे ओवर एक्सीडेड देयर डेस्टिनेशन, ठीक है ना, ओवर ट्रेवर्स देयर डेस्टिनेशन, तो अल्लाह ताला जा वजा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जागे, फिर वो जो है वो आगे बढ़ गए अपनी डेस्टिनेशन से। قال لفتاه, तो उन्होंने अपने फता से यानी यूशा बिन नून से कहा, आतिना गदाना, लाइए हमारे पास हमारा मॉर्निंग मील, हमारा ब्रेकफास्ट, लकद लकीना मिन सफरिना हाजा नसबा, कि बेशक हम जो है ना इस अपने सफर के अंदर हमें थकन पहुंची है, ठीक है ना, वी आर फीलिंग टायर्ड नाउ, अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करना, जमा का जो टेंस इस्तेमाल करना है, वी, ठीक है, हमें पहुंची है थकन। तो ये एक बड़े लोगों का स्टाइल होता है कि वो मैं से बात नहीं करते बल्कि वो हम से बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसी बात करते हैं कि हमने खाना खा लिया, हम ऐसे कह रहे थे, हम ऐसे कह रहे थे, मैं का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी अपने लिए भी हम का टेंस इस्तेमाल करते हैं, वी, हालांकि अल्लाह ताला इज़ वन, ठीक है, लेकिन वी का टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो अपने लिए वी का टेंस इस्तेमाल करें, लकीना, ठीक है, इट हैज़ रीच्ड अस, लेकिन मतलब उनका ये था कि भाई मुझे भूख लगी है। काला अरअयता इज अवैना इला सखरती, के यूशा बिन नून ने उनको जवाब दिया कि यू सी व्हेन वी स्टेड एट द रॉक, यानी वो जो एक रॉक वाली जगह थी जहां पर कि आप लेट करके सो गए थे, तो वहां पर ना ये सब हुआ था कि आई फॉरगॉट अबाउट द फिश, कि जो फिश ने वहां पर अजीब सा काम किया था। वमा अंसानी हूँ इल्ला शैतानु, लेकिन मुझे नहीं भुला दिया सिवाय शैतान ने, अन अज़कुरहु, कि मैं उस फिश के बारे में आपको बताऊं, तो शैतान ने ना मेरे जहन से ये बात निकाल दी। ये क्यों उन्होंने कहा कि शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपको उस फिश के बारे में बताऊं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? किसी कोई जवाब दे सकता है इसका? शैतान ने मुझे बुला दिया। हालांकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये सारे काम तो अल्लाह ताला करते हैं। एक अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया दाऊद साहब ने कि किसी इंपॉर्टेंट बात को भूल जाना, ठीक है ना, जो कि नेसेसरी थी वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम को, उनको बता देना चाहिए, दिस वाज हिज जॉब, ठीक है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ रखे इसलिए था, और ये ड्यूटी लगाई थी इनकी कि जब ऐसा हो तो मुझे तुम बताना। तो अपनी जॉब को भूल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो इस वजह से ना, अगरचे कि ही न्यू वेरी वेल कि जो भूलने वाला काम होता है अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है, अगर इंसान जेन्युइनली कोई बात भूल जाता है ना तो अल्लाह ताला उसके ऊपर सजा नहीं देता, ठीक है ना। जैसे भूल करके अगर आपका कोई फर्ज कजा भी हो जाए ना भूल की वजह से, ठीक है, तो अल्लाह ताला माफ कर देते, अलबत्ता कजा पढ़नी होती है, अगर आप नमाज भूल गए और टाइम खत्म हो गया तो कजा तो आपने पढ़नी है, लेकिन ये भूलना जो है ना ये आपके लिए गुनाह कबीरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो भूलना इज समथिंग दैट इज फॉरगिवन बाय अल्लाह सुब्हान व तआला। नबी सल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के ऊपर से भूल और यानी निस्यान और जुनून को उठा लिया, इस तरह की हदीस है, ठीक है, कि अल्लाह ताला सजा नहीं देते भूलने के ऊपर। तो खैर, लेकिन इन्होंने शैतान का तस्करा इसलिए किया क्योंकि ये पॉजिटिव बात नहीं थी, एक नेगेटिव बात थी। तो अदब का ये तकाजा है, एटिकेट्स का ये तकाजा है कि कोई भी नेगेटिव बात हो तो उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब ना करें, ठीक है, कि अल्लाह ने मुझे बुला दिया, बल्कि उसको जो है वो शैतान की तरफ मंसूब कर दिया इस वजह से, ठीक है। तो ये अदब की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। वत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि अजबा, तो उसने जो है ना मछली ने क्या किया था कि उसने समंदर के अंदर एक अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया था, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मछली ने क्या किया। खाला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि यही तो वो था कि जिसको कि हम तलाश कर रहे थे, यानी यही तो वो जगह थी, दैट वी वर सीकिंग। नबगी का मतलब वी वर सीकिंग दिस लोकेशन, ठीक है। फरतद्दा अला आसारिहिमा, तो फिर क्या किया उन्होंने, बोथ ऑफ देम टर्न बैक एंड दे स्टार्टेड यानी दे रिटर्न, ठीक है ना, वापस चलना शुरू हुए अपने कदमों के निशानों के ऊपर, यानी जिस रास्ते से आ रहे थे एग्जैक्टली उसी रास्ते पे उन्होंने बैक ट्रैकिंग शुरू करी, ठीक है, वापस चलना शुरू हुए। कससन का मतलब ये होता है कि रिट्रैक्टिंग, यानी लौटे वो अपने अपने ही कदमों के ऊपर वापस लौटे। तो ये जो मामला हुआ कि ये वापस लौटे, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर भी उलमा ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, ठीक है। मैंने शायद क्लास के अंदर आपसे मेंशन भी करी थी कि ये भूलना और फिर उसके बाद देर लग जाना और फिर उसके बाद वापस आना, ये सब क्यों हुआ। आई ऑलवेज, जब भी मैं पढ़ता था ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माईसेल्फ दिस क्वेश्चन कि ये एक खामखा की एक डिले, मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात होनी थी, तो इसमें एक ऐसा लगता ना खामखा की डिले, अपेरेंटली फॉर नो रीज़न, ठीक है ना, भाई पहुंच गए थे वहां तक, अब मुलाकात हो जाती, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते, तो ये सब क्यों हुआ। अच्छा, बड़ा आपने नेचुरल जवाब दिया है कि हाँ खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त वहां पर होंगे नहीं, तो इस वजह से अल्लाह ताला कॉज दिस डिले ताकि खिज़र अलैहिस्सलाम वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आंसर दैट उलमा के, ठीक है, कि खिज़र अलैहिस्सलाम वहां पे नहीं थे, वो शायद इस वजह से उलमा इसको एक्सप्लेन इस तरह से नहीं करते, क्योंकि भाई अल्लाह ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था ना कि भाई ये वो लोकेशन है जहाँ पे तुम्हें खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे, तो आप ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला वहां पे खिज़र अलैहिस्सलाम को पहुंचाना भूल गए होंगे, वादा कर दिया कि वहां मिलेंगे, फिर उसके बाद नाउज बिल्ला अल्लाह ताला से भूल हो गई कि खिज़र अलैहिस्सलाम को बताने में देर हो गई और खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्यों ये डिले हुआ, डिले होने की वजह से एक्चुअली हुआ क्या, आपने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को क्या कहा कि हमें पहुंची है थकन, ठीक है ना, वी आर फीलिंग टायर्ड नाउ, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि इससे पहले जो है मूसा अलैहिस्सलाम वाज नॉट फीलिंग टायर्ड, ठीक है ना, नींद आई थी, लेकिन नींद जो है वो टायर्डनेस के बगैर भी शायद आ सकती है, हमें तो कभी आ जाती है बगैर टायर्डनेस के भी, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं वो उनको बस आ जाती है नींद, चाहे वो कितना ही सो रहे हो ना पहले, फिर भी अगर लेटेंगे फिर भी नींद आ जाएगी। कुछ लोगों को माशाल्लाह किताब उठाते हैं नींद आ जाती है, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश हो और किताब उठाई और नींद आ गई, ठीक है। कुछ लोगों को किसी और तरीके से नींद आ जाती है। यानी नींद एंड टायर्डनेस आर नॉट कंपल्सरी विद ईच अदर, लाज़िम और मलज़ूम नहीं है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई थी लेकिन वो थके नहीं थे, ठीक है। अल्लाह ताला मेड श्योर दैट ही गेट्स टायर्ड, ठीक है, उनको थकन फील हो, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो किस काम के लिए निकले थे? वो निकले थे इल्म हासिल करने के लिए, सीकिंग नॉलेज, ठीक है। और सीकिंग नॉलेज में जो इंसान थकता है ना, अपने आप को कंज्यूम करता है, अपने आप को लगाता है, उसकी वजह से कुर्बानी देता है, अपनी नींद की कुर्बानी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी देता है, अपने फिजिकल एबिलिटीज की कुर्बानी, यानी थकाता है अपने आप को खूब, तो उसको जो है वो उस नॉलेज से ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा बेनिफिशियल नॉलेज उसको हासिल होता है, ठीक है। तो ये जो कुर्बानी होती है ना, इसके बदले में ज्यादा नॉलेज हासिल होती है। तो कुर्बानी देना जो है ये एक अच्छे तालिबे इल्म की निशानी है, इल्म के रास्ते पर थकना, ठीक है। तो उलमा ने ये इसकी ये रीजन लिखी है कि इसके इस तरीके से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को थका दिया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम कैन क्वालिफाई टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट, बिकम ए वेरी गुड स्टूडेंट, कि भाई इन्होंने इल्म हासिल, पहले तो उन्होंने जुबानी बातें करी थी ना, जुबानी क्लेम्स किए थे कि मैं 80 साल तक भी चलता रहूंगा, ठीक है, मैं जो हूँ वो नहीं थकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा जब तक, दीज वर ऑल वर्बल क्लेम्स, ठीक है ना, वर्बल यानी डिजायर्स बता रहे थे, ठीक है ना। बट अब इसके अंदर एक एक्चुअल फिजिकल भी तो आना होता है ना इसका, क्योंकि वाकई आपने किया भी जो आप कह रहे थे, ठीक है, तो अब जो है ना उनको ये फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो गया। तो इस वजह से सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको आगे बढ़ा दिया और याद ही नहीं करवाया, यूशा बिन नून को भी भुला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी थकन नहीं हुई, और बिलआखिर जब उनको थकन हुई तो उसके बाद फिर उनको वापस पहुंचा दिया, और वापस पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पे एक आदमी लेटे हुए थे, ठीक है। और कुछ किताबों में लिखा हुआ, यानी एक किताब में मैंने पढ़ा कि बस ये जमीन पर लेटे हुए थे, या बस ये लिखा हुआ कि वो लेटे हुए थे, ठीक है, और उन्होंने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, और चादर इस तरह ओढ़ी हुई थी अजीब तरीके से कि ऑल द वे सर से लेके पांव तक वो चादर में छुपे हुए थे, ठीक है। अब इसको खजर अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के आप करना नहीं शुरू कर दिया, बिकॉज डॉक्टर्स से कि वी शुडंट डू इट, ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुंह जो है वो खुला होना चाहिए, ठीक है, नींद के वक्त। खैर खजर अलैहिस्सलाम इस तरह सो रहे थे, जो भी इसके अंदर हिकमत थी। दूसरी किताब में मैंने ये देखा कि वो जब पहुंचे ना तो वो यानी गोया के सी साइड पे पहुंचे, ठीक है, शोर पे पहुंचे, जहां से कि फिर समंदर शुरू हो जाता था। तो जो खजर अलैहिस्सलाम थे वो समंदर के बीच में लेटे हुए थे, यानी ही वॉज लाइंग ऑन वाटर, ठीक है, पानी के ऊपर लेटे हुए थे, एंड ही वॉज फ्लोटिंग, ठीक है, वो करामत थी उनकी, या मौजज़ा था, अगर वो नबी थे तो मौजज़ा कहेंगे, और अगर वो नबी नहीं थे तो उसको करामत कहेंगे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी, और आवाज़ में उन्होंने सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने उनकी जब आवाज़ सुनी तो फिर उन्होंने अपनी चादर हटाई, या वो उठे और उन्होंने फिर कहा कि भाई ये कौन सलाम करने वाला, यहाँ पर तो कोई ऐसे लोग नहीं रहते हैं जो कि सलाम किया करते हैं, ठीक है, तो ये कौन आ गया? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने डबल वेरीफाई किया कि मूसा बनी इसराइल, क्या बनी इसराइल वाले मूसा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, मैं वही मूसा हूँ जो कि बनी इसराइल का पैगंबर हूँ। तो अब यहाँ से जो है ना वो एक तफसीली हदीस शुरू होती है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बातें बताई, और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों की हदीस की सही तरीन किताबें, उन दोनों के अंदर ये वाली हदीस मौजूद है। तो इसकी जो डिस्कशन है मज़ीद, वो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। किसी को अगर कोई क्लास कोई सवाल हो तो ये पूछ लें। किस जबान में मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान तो इब्रानी या सिरियानी ही आती है, क्योंकि बनी इसराइल की यही जुबान थी, इब्रानी या सिरियानी। आजकल तो ये लैंग्वेजेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इनकी जो एक म्यूटेड म्यूटेटेड फॉर्म अब है वो हिब्रू कहलाती है, गालबन इंग्लिश में एरामेक कहते हैं इब्रानी को। अरब तो नहीं थे ये लोग। कोई और सवाल है किसी का ऑनलाइन क्लासेस में? अगर नहीं तो सवाल, टाइम हमारा हो चुका है। यंग मैन का मतलब पिता का मतलब दूध ही होता है, यानी कोई जो के बिटवीन द एज ऑफ 18 या 15 से लेकर के 40 तक की जो एज होती है ना, इसको यूथ ही कहते हैं। 15 टू 40, 40 के बाद फिर वो यूथ खत्म होता है। तो ये गालबन 20 20s या 30s में लगते हैं। ठीक है, चलो अलहमदुल्ला क्लास हमारी दोबारा शुरू हो गई है, तो इसमें हम जारी रखेंगे। अल्लाह तौफीक से, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।